सो वर्स 30 द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट आई एम नॉट. तो यहाँ पे शंकराचार्य जी क्या बता रहे हैं कि अभी तक हम जाने हैं कि जो फॉल्स आए हैं, हम लोगों ने जाना था जो भ्रम है, जो अहंकार है जिसको मैं समझता हूँ, वो तो हमारी ईगो से लिंक्ड है. तो अब जो रियल आए है, जो सच में मैं हूँ, जो आत्मन हूँ, जो सेल्फ विद, जिसको हम बोलते हैं विद अ कैपिटल एस है, उसको हम कैसे जाने, उसको क्या किया जाए कि जिसको जाना जाए. और यहाँ पे शंकराचार्य जी की दी हुई, या शंकराचार्य जी के उनसे भी पहले दी हुई होगी, ये तो हमेशा शाश्वत रही है ये क्रिया, वो है नेति नेति की क्रिया. क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ निगेशन बाय द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑल उपाधीज ऑल कंडीशनिंग्स. हम बार बार ये बोलते हैं कि हमारा सारा अज्ञान कंडीशनिंग की वजह से है, है ना. तो उपाधि है जो हम, जिन उपाधियों को हमने मैं मान लिया है, तो हमें क्या करना है, तो उन उपाधियों को अगर हम एक एक करके हटाते चले जाएं तो हम कहाँ पहुँचेंगे, हम उसी पर पहुँचेंगे, रियल सेल्फ पे. सिर्फ वो ही बच जाएगा, सिर्फ वो ही मैं होगा, वो ही आत्मन होगा. वहाँ पहुँचने के लिए नेति नेति का हमें यहाँ पर सहारा लेना होगा. नेति मतलब नॉट दिस नॉट दिस. जैसे हमने शुरुआत की और हमने बोला कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ना. और एक जो मैं एक बार बताया था, वही जो अर्चना जी बोलती है ना उसके बारे में, कि अगर देखो शरीर मैं नहीं हूँ उसको जानना कितना आसान है, अगर हम सिर्फ इतना समझें ये पूरा शरीर है. उस शरीर में आपके नाखून भी हैं, आपके बाल भी हैं, आपके दांत भी हैं, है ना, आपका मल भी है, आपने उसको भी मैं माना हुआ है. अगर हम उसको निकाल दें, क्या मैं फिर भी हूँ? और जवाब आएगा हाँ मैं फिर भी हूँ. तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप में अगर हम करें कि चलिए मेरी एक मेरा पैर निकाल दीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं लंगड़े होते हैं, है ना, एक मेरा पैर निकाल दीजिए, तो मैं फिर भी हूँ. अब शरीर का एक हिस्सा, एक अंग नहीं रहा, मैं फिर भी हूँ. दूसरा पैर भी निकाल दीजिए, एक हाथ निकाल दीजिए, दूसरा हाथ निकाल दीजिए, आप दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं, पर मैं फिर भी हूँ. फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक आँख को निकाल दीजिए, एक कान बंद कर दीजिए, है कि नहीं. आप देखिए आपका शरीर को चलाने के लिए बहुत कम अंगों की ज़रूरत है. आपका दिल धड़क रहा होना चाहिए, आपका लिवर, आंतें और आपका दिमाग, अगर थोड़े से भी ये शरीर के अंग हैं तो शरीर चल रहा है. तो जिसको मैं शरीर माने बैठा हूँ, जिसको मैं माने बैठा हूँ, जिस शरीर को, उसका हम 70% हिस्सा भी निकाल दें तो भी आप हैं, तो आप शरीर कैसे हो सकते हैं, है ना. तो ये हमने कैसे जाना, ये ज्ञान से. ये ज्ञान मार्ग का तरीका है नेति नेति करने का, कि वो हर चीज़ जो मैं नहीं हूँ उसको अगर मैं निकाल दूंगा तो आखिर में क्या बचेगा, मैं ही बचूंगा, है ना. तो शरीर मैं नहीं हूँ उसको जानने का ये बहुत अच्छा तरीका है. अब ये हम ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं. यहीं पर क्रिया योग में क्या होता है, वहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, मतलब यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग नहीं होता कि ये मैं शरीर नहीं हूँ. वहाँ पर आप शरीर से अलग ही हो जाते हैं, आप देख पाते हैं, खुद से देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि शरीर वहाँ पड़ा है और आप अलग हैं. योग निद्रा में भी ये कभी कभी होता है, और फिर आप देख रहे हैं कि हाँ ये तो मैं हुई नहीं, है ना. तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मार्गों की भिन्नता है, मैं उसमें डिफरेंस बता रही हूँ. पहले में बुद्धि का प्रयोग किया गया है जिससे भी हम जान सकते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, और दूसरा है हम प्राण का प्रयोग कर रहे हैं, प्राण ऊर्जा. प्राण ऊर्जा को हम जब इतना कर लेते हैं संगठित, कि वो प्राण ऊर्जा उस शरीर से अलग हो जाती है, तो आप अपने अनुभव से ही जान पाते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो. और जैसे ही वो होता है उसी समय आपको ये ज्ञात हो जाता है, उससे आपकी अटैचमेंट, जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है, वहीं पर आपकी खत्म हो जाती है. इसीलिए सारी साधनाओं का यही पर्पस है, और कोई पर्पस नहीं है हर साधना का, आपको ये दिखाना कि आप ये नहीं हो. तो फिर नेति नेति में क्या होता है, आप अपने शरीर को हटाइए, मन को हटाइए, इंद्रियों को हटाइए, इंटेलेक्ट को हटाइए, जितनी भी आपकी ये उपाधियां हैं, जो उपाधि आपने दी हुई है उनको हटा दीजिए, और फिर क्या बचेगा, उसके बाद ही वो रियल सेल्फ बचता है. फिर वो क्या कहते हैं कि तुमने बहुत लोगों से सुना है, और गुरु भी बोलते रहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, लेकिन तुम्हारा ये अपना अनुभव नहीं है. क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे हाँ मैं साक्षी हूँ, और ये बोलोगे मैं साक्षी हूँ, फिर बोलोगे लेकिन मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई आज, मेरे तो भाई ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो फिर साक्षी कहाँ रहा? तो तुमने तो साक्षी का मजाक उड़ा दिया यहाँ पे, तो है ना, तो ये सही नहीं है। तो रियल सेल्फ, साक्षी, जो तुम हो, जो तुम दृष्टा हो, उसको इन उपाधियों से निकालना होगा। जैसे कि नेति, नेति का इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे आपके घर में सपोज 5 दालें हैं, आपने मिक्स कर दी उनको, इन्होंने यहाँ पे मिलेट्स का, ग्रेन्स का दिया है, पर मैं चलो दालें ले लेती हूँ, आप मूंग दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल मिक्स कर लीजिए सब दालों को, ठीक है। अब आपको उसमें से चना दाल चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप चना दाल निकालने के लिए आप बाकी जो दालें हैं, जब मूंग दाल हाथ में आएगी आप बोलोगे नहीं ये नहीं है, ये चना दाल नहीं है, अरहर हाथ में आएगी तो बोलोगे नहीं ये चना दाल नहीं है, उड़द आएगी तो आप बोलोगे नहीं ये चना नहीं है, मसूर आएगी तो ये चना नहीं है। जब वो चारों हट जाएंगी, है ना, तो क्या बचेगा, तो चना दाल ही बचेगी, है ना। यहाँ पे तो हमें चना दाल वैसे भी पता है कौन सी है, देखो ये सिर्फ एनालॉजीज हैं, ये मेटाफॉर्स हैं, तो हम सीधा भी चना दाल उठा सकते हैं। लेकिन जब हम रियल सेल्फ की बात करते हैं, वो टैंजिबल नहीं है। जैसे हमारा शरीर टैंजिबल है, मतलब एक भौतिक है, हम उसको देख सकते हैं, हम इंद्रियों से जानते हैं कि ये शरीर है, तो लेकिन उस सेल्फ को तो हम पॉइंट आउट कर ही नहीं सकते, है ना, वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है, वो थिंग नहीं है। तो क्योंकि वो इतना सटल है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, तो हमें सिर्फ उन सारी चीज़ों को हटाना है, उन स्थूल चीज़ों को हटाना है जिनको हम जानते हैं। तो मुझे पता है ये शरीर है जो स्थूल है, लेकिन ये वो नहीं है, तो मैंने शरीर हटा दिया, मैंने अपना मन हटा दिया, मैंने अपने विचार हटा दिए, मैंने अपनी भावनाएं हटा दी। ऐसे हटाते 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 क्या बचेगा कि जो मैं हूँ। लेकिन वो फिर भी ये बोलते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, ये हटा भी दो, तुम्हारे हटाने के बाद नॉट दिस करना फिर भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन दिस जो बचा उसको फिर से पकड़ना भी, उसी के अंदर सारा, मतलब सारा राज तो उसी में है, उसको फिर भी पकड़ना, ऐसा नहीं है कि नेति नेति करा और आपके हाथ में वो आ गया, है ना। तो क्योंकि इतना इजी होता तो सबका हो जाता, सिर्फ नेति नेति करने से भी वो हट तो गया, लेकिन बचा क्या है, पकड़ना किसको है, उस चीज़ को पकड़ना भी वही सारा कहानी है। फिर वो कहते हैं यहाँ पे कि सब बोलते हैं भगवान मेरे अंदर है, गॉड इज़ विद इन मी। अब वो कहते हैं तुम सोचो, अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम कहाँ खत्म होते हो और भगवान शुरू कहाँ होता है? अगर तुम्हारे अंदर है, क्या तुम बोल सकते हो कि कहाँ है वो बॉर्डर, कहाँ है, कहाँ पे वो जो लाइन है जहाँ तक तुम हो और उसके बाद भगवान है? जैसे कि हम अगर सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, 20 लोग हैं, तो हम बॉडी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना, हर एक बॉडी के अंदर कि ये मेरी बॉडी है, या मैं बॉडी और चेयर है, मैं एक चेयर पे बैठी हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि मेरी बॉडी यहाँ ख़त्म हुई और चेयर यहाँ शुरू हुई। लेकिन अगर 20 लोग बैठे हुए हों इकट्ठे, तो शरीरों में तो डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, पर क्या मन में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे 20 मन है, तो किसका मन कहाँ ख़त्म हो रहा है और किसका मन कहाँ शुरू हो रहा है? क्योंकि इतना सटल है तो हम वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो क्या है फिर से कि अगर मैं आत्मन हूँ, तो शरीर तो फाइनाइट है, शरीर तो भौतिक है, और मन भी देखा जाए तो एक तरह से भौतिक ही है, लेकिन जो आत्मन है वो तो भौतिक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है और इनफाइनाइट है, उसकी कोई सीमा भी नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। पर अगर उसकी सीमा ही नहीं है तो कैसे उसको जानोगे? तो फिर वही कि सिर्फ हम इतना ही प्रोसेस कर सकते हैं कि ये जान लें कि क्या मैं नहीं हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, है ना, कि मैं क्या नहीं हूँ, उतना जाना जा सकता है। और फिर इन्होंने एक और चीज़ बोली है, देखो वो क्या बोलते हैं कि अगर तुमने अपनी आइडेंटिफिकेशन को, अपनी उपाधि कि तुम ये मन शरीर बुद्धि हो, इसको तो तुमने नहीं हटाया, आइडेंटिफिकेशन रखा, और फिर भी अगर तुम बोलो कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही आत्मन हूँ, तो तुम क्या हो जाओगे, तब तुम रावण हो जाते हो। और अगर तुम ये जान जाते हो, अगर तुम उस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ देते हो और फिर जानते हो कि मैं आत्मन हूँ या ब्राह्मण हूँ, तब तुम राम हो जाते हो। तो उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस दिया है रावण और राम में, बिना जाने, बिना आइडेंटिफिकेशन तोड़े उस उपाधि से तुम रावण हो, और उसको हटा दोगे तो तुम राम हो। और इसी में 118 के सेकेंड पैराग्राफ में, ये इंग्लिश वाली बुक में देखो, उन्होंने लास्ट लाइन दी, सेकेंड लास्ट लाइन से मैं पढ़ रही हूँ, इट इज प्रॉबेबली ईजियर टू ग्रास्प द नोशन ऑफ नॉट दिस बट इट इज इंडीड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फैथम द सब्जेक्ट ऑफ दिस. तो पहला क्या है कि मैं ये नहीं हूँ. अगर आप खुद ही सोचो, अपने अनुभव में लो कि अगर शायद कुछ साल पहले आपको किसी ने बोला होता कि अरे तुम ये हो ही नहीं, तुम ये शरीर हो ही नहीं, तो आपको लगता वो पागल है. अगर आपने ये सब जाने बिना, मतलब अभी तो सबको ये क्लियर हो गया है एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो पहले तो ये जानना ही कि मैं ये शरीर नहीं हूँ बहुत बड़ी बात है ना. क्योंकि हमने हमारी पूरी आइडेंटिफिकेशन शरीर से ही है, शरीर मन से. लेकिन यहाँ पे वो एक और बात कह रहे हैं. वो कह रहे हैं पहला स्टेप है नहीं जानना, ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ. लेकिन ये भी अभी ये फिर भी आसान है. ऑल्दो ये भी बहुत मुश्किल है, ये फिर भी आसान है. मुश्किल क्या है? वो जानना कि जो है. अब इन्होंने अगले वाले पैराग्राफ में आत्मन और ब्रह्मन को डिफ्रेंशिएट किया है. ऑल्दो दोनों सेम ही हैं. आप लोग ज़्यादा देखोगे ब्रह्म वेदांत में या ज्ञान मार्ग में जो एक्चुअल वर्ड है वो है ब्रह्मन, ब्रह्म, है ना. मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, उन्होंने डिफरेंट क्या किया है. व्हेन द सेल्फ, मतलब सेल्फ कौन सा, वही जो एस, सेल्फ विद द कैपिटल एस, इज एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल माइंड इंटेलेक्ट यूनिट, तो हम उसको बोलते हैं आत्मन. जो आत्मन जब एक एक व्यक्तिगत शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तो आत्मन बोलते हैं. एंड व्हेन यू टेक अवे द कनेक्शन विद एन इंडिविजुअल यूनिट द सेम सेल्फ इज नोन एज ब्रह्मन. यहाँ पे आपको लोगों को समझ में आया, नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं है. आत्मन और ब्रह्मन में डिफ्रेंशिएट किया है, ओके. लेकिन हम लोग इनको एक भी ले सकते हैं, आत्मन ब्रह्मन एक ही मान के चल सकते हैं. आत्मन दस, आत्मन एंड ब्रह्मन आर टू नेम्स ऑफ द सेम एंटिटी, एक ही एंटिटी के दो नाम है. इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ. वैसे तो आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे. अब देखो, मैं यहाँ पे एक कमरे में बैठी हुई हूँ, जैसे मैं इसको मेडिटेशन रूम बोलती हूँ. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं मेडिटेशन रूम में बैठी हूँ, ठीक है. फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं तपोवन में बैठी हूँ. मैं ये भी बोल सकती हूँ मैं वाघोली में बैठी हूँ, मैं पूना में बैठी हूँ, मैं इंडिया में बैठी हूँ, मैं एशिया में बैठी हूँ, मैं पृथ्वी पर बैठी हूँ, पृथ्वी लोक पर, या मैं सोलर सिस्टम में बैठी हूँ, या फिर जो हमारी गैलेक्सी है इसका जो भी नाम है मुझे पता नहीं है, उसमें बैठी हूँ. आप समझ रहे हो, चीज़ वही है. आइडेंटिफिकेशन मैं की किसके साथ हो रही है. तो देखा जाए तो ये जो अलग अलग हैं, ये जो कमरा है, इसको किसने डिफाइन किया, एक बाउंड्री दी है. जो बाउंड्री है वो मेरी ही दी हुई बाउंड्री है ना, कि ये चार दीवारें हैं तो ये कमरा अलग हो गया, या फिर ये जो वॉल्स बन गई तो ये घर अलग हो गया, या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी है उसने एक ड्रॉ लाइन कर दी तो ये वाघोली या खराड़ी एक अलग एरिया हो गया, या फिर ये पुणे हो गया या महाराष्ट्र हो गया, है ना. चीज़ तो एक ही है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? इवन सिटिंग एट द सेम प्लेस आई कैन से वेयर आई एम सिटिंग, है ना. अलग 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 हो सकता है. तो यहाँ पे भी वो यही बोल रहे हैं कि अगर तुमने उस आत्मन, उस सेल्फ को एक इंडिविजुअल यूनिट से एसोसिएट किया तो हम उसको आत्मन बोल देते हैं, और अगर तुमने उस यूनिट को इंडिविजुअल सेल्फ से एसोसिएट नहीं किया तो वो ब्रह्मण हो गया. तो ब्रह्मण इज द, जिसको बोलेंगे हम टेक्निकली करेक्ट टर्म. और फिर इन्होंने बताया है इसी ब्रह्मण को भक्ति मार्ग पर जो भगवान का हम नाम देते हैं, है ना, जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो ये ही है, यही ब्रह्मण है. अब मैं आ गई हूँ 120 पेज के लास्ट पैराग्राफ पे. यहाँ पे इन्होंने दो नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, चैतन्य और चिदाभास. ओके, तो इस पे बात करते हैं. चैतन्य, दैट इज द सेंशियंट वन, इज ऑल्सो नोन एज चिद. एंड अनदर वर्ड फॉर रिफ्लेक्शन इज आभास. दीज टू वर्ड्स कंबाइंड फॉर्म द वर्ड चिदाभास. दिस इज अनदर वर्ड फॉर जीव. देखो, एक है चिद और एक है आभास, और जीव जो है वो है चिदाभास. जीव कौन है, मतलब इंडिविजुअल सेल्फ, द क्रीचर, द माइंड बॉडी इंटेलेक्ट. और आभास क्या है, उस जीव का रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज आभास, चिदाभास. तो यहाँ पे जो उन पहले भी हम लोगों ने दो बार किया है ये एग्जाम्पल, मून का और रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इन द पॉन्ड ऑफ वाटर, राइट. सो शी इज सेइंग मून इज द सुप्रीम सेल्फ, माइंड इज द पूल ऑफ वाटर, एंड रिफ्लेक्शन इज द जीव और द चिदाभास. नाउ व्हाट इज इट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें यहाँ पे समझना क्या है, कि जब वो पूल ऑफ वाटर जिसके अंदर वो चिदाभास आ रहा है, जिसमें मून की रिफ्लेक्शन आ रही है, अगर वो पानी हिलेगा तो वो जो चिदाभास है वो हिलता हुआ नजर आएगा, है ना। अगर मून की रिफ्लेक्शन आ रही है पानी में और पानी को आप हिला दो या पानी गंदा होगा तो जो रिफ्लेक्शन है या तो वो गंदी नजर आएगी या फिर वो हिलती हुई नजर आएगी। अ डिस्टर्ब्ड माइंड विल डिस्टर्ब द जीवा, मतलब वो जो गंदा पानी है या हिलता हुआ पानी है उसने किसको डिस्टर्ब किया, उसने उस रिफ्लेक्शन को डिस्टर्ब किया, उसने उस चिदाभास को डिस्टर्ब किया, है ना। लेकिन जो एक्चुअल है, जो सेल्फ है, क्या वो डिस्टर्ब हुआ? नहीं, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसे ही जब आपको कोई परेशानी होती है, कोई सिचुएशन ऐसी बाहर आ जाती है जिससे कि कौन परेशान होता है, मन परेशान होता है, ये जीव परेशान होता है, लेकिन आप परेशान नहीं होते, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो जीव परेशान हो रहा है, आप नहीं हो रहे। अब जैसे अर्चना ने वो एक मैसेज डाला था ना कि इतनी तारीफ मत करो कि अहंकार ना आ जाए, है ना। अहंकार कहाँ आएगा? देखो, अहंकार आएगा ही। मैं ये नहीं बोल रही अर्चना को अहंकार आएगा, मेरा मतलब ये है कि अहंकार मन का एक हिस्सा है, मन का एक सिम्टम है, मन का एक स्वभाव है, मन का काम है। जो ईगो है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, तो वो अहंकार का भी इस्तेमाल करती है। जो अगर जब तक मन है लोभ आएगा ही, जब तक मन है क्रोध आएगा ही, जब तक मन है ये सारे नेगेटिव इमोशंस आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे, है ना। जब अगर पानी में चांद की रिफ्लेक्शन आ रही है तो पानी क्या कभी स्टेबल रह सकता है पूरा समय? इज़ इट पॉसिबल कि पानी हमेशा स्टेबल रहे? नहीं रह सकता ना, पानी हिलेगा भी, हवा चलेगी, कुछ भी होगा, पानी गंदा भी होगा, ये तो होना ही है। आपको क्या रियलाइज़ करना है? सिर्फ इतना रियलाइज़ करना है कि मैं वो नहीं हूँ, ये सिर्फ वो जो डिस्टर्ब हो रहा है, वो जो परेशान हो रहा है, वो जो दुखी हो रहा है, वो जो रोगी है, वो मैं नहीं हूँ, है ना। जैसे चांद को कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे चांद की रिफ्लेक्शन हिल रही है, गंदी हो रही है, चांद को कुछ नहीं हो रहा आसमान में, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि एक चैतन्य है और एक चिदाभास है। चैतन्य मतलब चांद, जो चांद उसमें है, और चिदाभास है उसकी रिफ्लेक्शन। तो आप जो हो, ये जो मनो शरीर यंत्र है, ये आपकी रिफ्लेक्शन है। तो किसको प्रॉब्लम हो रही है? रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, आप में प्रॉब्लम नहीं हो रही। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया था कि जब आप चल रहे हो, आपकी शैडो होती है ना, शैडो बनती है, उस शैडो के ऊपर से अगर एक गाड़ी चली जाए तो आपको दर्द होगा क्या? आप चिल्लाओगे कि हाय मेरे को इतनी, मेरी शैडो के ऊपर से एक गाड़ी चली गई? रियलाइज़ भी नहीं होगा। लेकिन चलो रियलाइज़ हो भी गया, चलो मैं मानती हूँ आप देख भी रहे हो एक गाड़ी जा रही है, तो क्या आप गाड़ी को बोलोगे रुक जा यहाँ पे तुम, है ना, मेरी रिफ्लेक्शन आ रही है? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपको ये यंत्र नज़र आ रहा है, ये भी चैतन्य का चिदाभास है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। उसमें सब अवगुण रहेंगे, तभी हम बात करते हैं चित्त कभी प्योर शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन वो शुद्ध हो गया वो चित्त नहीं रहेगा। बिना अशुद्धि के चित्त हो ही नहीं सकता। जैसे एक नदी, क्या दो किनारों के बिना एक नदी बना सकते हो? इज इट पॉसिबल टू हैव अ रिवर विदाउट टू बैंक्स? नहीं हो सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अशुद्धि हमेशा रहेगी। हाँ, फर्क क्या हो जाता है? एक होता है जैसे हम जो गुण बात करते हैं साधक की, कि इतनी ज़्यादा अशुद्धि है कि बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, है ना, वहाँ बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, इसलिए आपको साधना, इसलिए आपको सारा चित्त शुद्धि के सब नियम दिए गए हैं कि आप इस लायक हो जाओ कि आपकी बुद्धि चलने लगे। लेकिन क्या वो अशुद्धि पूरी 100% चली जाएगी? नहीं, वो नहीं जाएगी, 100% कभी नहीं जाती। बस आप क्या होता है, जैसे अगर अहंकार होगा, पहले क्या होगा, आप देखोगे अहंकार आया, आप बोलोगे अरे ये तो मैंने किया है, है ना। तो अर्चना बोलेगी अरे ये तो मैंने इतना अच्छा लिखा है। अभी क्या देखेगी अर्चना? हाँ, दिमाग में आएगा मैंने लिखा है, लेकिन उसी समय जो देख रहे हो समझ में आएगा कि हाँ नहीं, और बहुत चीज़ें हैं ना, बुद्धि यहाँ पे काम करेगी। तो आप कोई एक्शन नहीं लोगे, आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे कि उस अहंकार को बढ़ावा मिले, ये डिफरेंस हो जाता है दोनों चीज़ों में। अब देखो फिर वो आ गए नेक्स्ट उस पे, एब्सोल्युटली। जब तक शरीर है, जब तक मन है, उसका मतलब ही है वो रह ही नहीं सकते, प्लीज रिमेम्बर दैट, है ना। बस सिर्फ क्या होगा, डिफरेंस होगा, बहुत कम होगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो कुछ गुरु लोग होते हैं जो इतने प्योर हो जाते हैं कि उनकी इम्प्योरिटी इतनी कम हो जाती है कि वो है, मतलब क्या बोलोगे, अगर वो जरा सी भी और कम हुई, उनको पता है कि वो शरीर छोड़ना पड़ेगा उन्हें, ओके। तो बहुत सारे गुरु लोग जानबूझ के अशुद्धि लेते हैं और कभी कभी ऐसे कार्य भी करते हैं कि अशुद्धि बढ़ जाए। अगर स्पेशली उनको ये काम दिया गया है कि आपको अभी और लोगों का उद्धार करना है या अभी बाकी बचा है काम, तो ऐसा ज़रूर होता है बहुत सारे गुरुओं में। मैं ये नहीं बोल रही कि सब गुरुओं के साथ ऐसा होता है और सब जो गलत काम करते हैं वो उसी की वजह से करते हैं, बिकॉज गुरुज भी हर तरह के होते हैं ना। हम इतने सारे जो किस्से भी सुनते हैं गुरुओं के, गड़बड़ होती है वो भी होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि उनको इस शरीर को रखने के लिए अशुद्धि लेनी पड़ती है। तरुण ने सेशन लिया था इसी के ऊपर और उन्होंने ये बताया था, कहते कभी कभी ना ऐसा लगता है शिष्यों को कि अरे गुरु हमें तो बोल रहे हैं तुम इन सब से निकलो निकलो, और आप उल्टा देखो कि गुरु उसमें और घुस रहा है, ओके, और घुसे जा रहा है, जो शिष्य को मना कर रहा है खुद वो कर रहा है। तो कहते ऑब्वियसली शिष्य नहीं समझ सकता, उसकी उतनी बुद्धि नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ पाए, लेकिन वो सिर्फ उसको अपने आप को रोकने के लिए, रखने के लिए उतनी अशुद्धि करनी पड़ती है, अगर वो शुद्धि उतनी ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए क्या है इसमें। देखो वही बात आगे घूम फिर के, दूसरे क्या कर रहे हैं उनमें कितनी शुद्धि है अशुद्धि है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपना देखना है। अब देखो नेक्स्ट जो आता है, कर्मा की इन्होंने बात की है। वेयर डज द थॉट ऑफ डूइंग एनी कर्मा एनी एक्शन अराइज। हम लोग सब कर्म की बात करते हैं ना, अच्छे कर्म करना, कर्मों का बंधन, कर्मों का जाल। कर्म होते कहाँ हैं? वो मन में होते हैं, है ना, मन में है। कर्म तो सारे हैं ही मन में। अगर तुम अच्छा कार्य करते हो, ये अच्छा कौन बोलता है कि मैंने अच्छा कार्य किया? मन। अच्छा और बुरा डिफाइन भी मन ही करता है ना। आपके लिए जो एक कार्य अच्छा है किसी दूसरे के लिए खराब भी हो सकता है। आप एक चीज़ सोचते हो मैंने बहुत अच्छी की अपने मन से, लेकिन दूसरा हो सकता है आपको उसी के लिए क्रिटिसाइज़ भी कर दे। होता है कि नहीं होता? पहली बात तो अच्छा बुरा ही एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है हर एक के लिए, ये व्यक्तिनिष्ठ है। इसको हम बोलते हैं इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड, इट इज़ अ पर्सनलाइज्ड चॉइस। जो अच्छा बुरा है हर एक के लिए अलग अलग है, हर एक की डिग्रीज अलग हैं उसकी। और दूसरी चीज़ ये मन में है। जब आप अच्छा कार्य करोगे तो कौन खुश होता है? ये जीव खुश होता है ना, चिदाभास खुश हुआ, वो जो रिफ्लेक्शन है वो खुश होती है कि मैंने अच्छा काम किया, है ना। अगर कुछ खराब होता है तो भी दुखी कौन होता है? जीवी खुदा होता है, जीवी दुखी होता है। सो जीव और द चिदाभास परसीव्स पेन एंड प्लेजर। ये सुख और दुख भी किसको लगते हैं? जीव को ही लगते हैं। और ये सिर्फ वो कहते हैं इंसानों की बात नहीं है, जानवरों में भी ऐसा ही होता है। जानवरों का भी मन होता है और उनको भी पेन और प्लेजर फील होता है, उनको भी सुख दुख का एहसास होता है। अब अगले पैराग्राफ में इन्होंने ये बोला है, बॉटम लाइन इज यू डोंट नो द आत्मन, दैट इज वाई द सोरोज एंड जॉयज दैट अराइज इन योर माइंड यू सी देम एज अराइजिंग इन यू। आत्मन वॉज इज एंड विल रिमेन ब्लिसफुल, सोरोज एंड जॉयज आर परसीव्ड बाय द जीवा बाय द चिदाभास, है ना। तो घूम फिर के बात कहाँ आ गई कि जब तक हम आत्मन नहीं हो जाते तब तक हम किससे आइडेंटिफाइड रहेंगे? इसी शरीर से और इसी मन से। और इस शरीर और मन में जो भी होता रहेगा हमें यही लगता रहेगा कि ये मेरे साथ हो रहा है ना, यही तो हो रहा है। जितने भी अटैचमेंट्स हैं, जितने भी राग द्वेष हैं, जितने भी दुख हैं, किसके साथ हैं? इसी शरीर और मन के साथ ही हैं। तो फिर हमें क्या करना है? ये जान जाना है पूरी तरह से कि ना मैं ये शरीर हूँ ना मन हूँ, मैं सिर्फ इनका दृष्टा हूँ, मैं सिर्फ इनका साक्षी हूँ।